ओम शांति। आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय प्रेम दीदी जी आए हैं, तो हम इनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रेम दीदी जी बचपन से इस ईश्वरीय ज्ञान में हैं और 55 वर्षों से बाबा की सेवाओं में अथक सेवाधारी बनकर भारत के कोने कोने में योग शिविर, योग भट्टियां, तपस्या कराने के लिए आप भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते रहते हैं। और आप पंजाब जोन के एक वरिष्ठ दीदी हैं और बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो आज ऐसे बाबा मम्मा की विशेष पालना में पले हुए यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा और यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती मम्मा, तो आप ऐसी महान विशेष आत्मा हैं जो बाबा मम्मा के हाथों से पले हुए, तो बहुत सुंदर सुंदर आज आपको अनुभव सुनाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो ऐसे हम बहुत ही प्यारे स्नेही रमणीक दीदी जी से निवेदन करते हैं कि वो आपको बहुत अपने अनुभवों से झोली भरेंगे ज्ञान रत्नों से, जिसका आपको बहुत ही जीवन के अंदर लाभ होगा, फायदा होगा। पुरुषार्थ में आदरणीय प्रेम दीदी जी।
ओम शांति। अच्छी तरह से मुस्कुरा करके दो बार और बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगी। ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति। आदरणीय दादी जी हमेशा कहते हैं कि ओम शांति मंत्र का उच्चारण आत्मा को शांति देता है, सुख देता है, आनंद की अनुभूति कराता है। इसके आप सब बाबा के बच्चे अनुभवी होंगे। सबसे पहले मैं प्यारे बाबा के घर में मधुबन तपोभूमि में आप पधारे प्यारे बाबा की ओर से, आदरणीय दीदी दादियों की ओर से, मधुबन निवासी सर्व भाई बहनों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। कलब पहले के बिछड़े हुए बच्चे बाबा के घर में पहुंच गए। हम अपने गृहस्थ आश्रम के सब कामों को छोड़कर विशेष समय निकाल करके प्यारे बाबा के घर में आए हैं। बाबा से मिलन मनाने के लिए आए हैं। तो बाबा भी चाहेंगे कि मेरे बच्चे बाप समान संपन्न बने, संपूर्ण बने और सब वरदानों से भरपूर हो। हम सब पद्मा पद्म भाग्यशाली बाबा के बच्चे हैं। अव्यक्त बाप दादा ने चार बातें बहुत अच्छी बताई है कि बच्चे बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए, बाप की प्रत्यक्षता करने के लिए आपको चार बातों का ध्यान देना अति आवश्यक है। सबसे पहले आत्म स्वरूप में स्थित होकर बाबा को याद कर अपनी ऐसी स्थिति बनानी है कि आपकी सूरत से प्यारे बाप दादा की मूरत नजर आए। जो भी आपके सामने आत्मा आए उसको बाप का साक्षात्कार हो। दूसरा, बाप दादा ने बताया कि आपके नैनों में रूहानियत का नशा होना चाहिए। तीसरा, बाबा कहती हैं कि आपके चेहरे से सर्व प्राप्तियों की खुशियों की झलक दिखाई देनी चाहिए। चौथा, बाप दादा कहती हैं कि आपकी चलन में निश्चय का नशा, सर्व प्राप्तियों की खुशी की झलक होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या प्रयास करना है, हमें उसके लिए नॉलेजफुल बनना है, बाप दादा की श्रीमत का पालन करना है। शिव बाबा जब कलयुग के अंत सतयुग की आदि के पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं तो तीन बातें स्थापन करती हैं, धर्म, राज्य और कुल। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, सतयुगी अटल अखंड निर्विघ्न राज्य की स्थापना और वर्तमान ईश्वरीय कुल और भविष्य में दैवी कुल की स्थापना करते हैं। बाप दादा ने बहुत स्पष्ट रीति से बताया है कि हमारी आत्मा सर्वप्रथम परम धाम में रहने वाली थी। आज से 5000 वर्ष पूर्व जब हम इस धरती पर आए तो हमारी आत्मा बिल्कुल पवित्र थी। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म थे। जिसके लिए गाय ने कि ये भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। यहां पर इतना सुख शांति था, दूध घी की नदियां बहती थी, इतना प्रेम प्यार था कि शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। हमारी आत्मा संपूर्ण पवित्र थी। त्रेता युग आया, 2 कला कम हुई। फिर द्वापर युग आया, सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म। जन्म बढ़ते चले गए और कलाएं कम होती चली गई। और बढ़ के वृक्ष का बाबा मिसाल देती हैं। आपने मुरली में भी सुना होगा कि बच्चे, जिस समय से आप गुजर रहे हैं इसमें एक आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। थुर जो है, जो जड़ है, खत्म हो गई। कलकत्ता में बड़ का वृक्ष है, कई मील में फैला हुआ है, परंतु उसकी जड़ नहीं है। और आगे फिर तरह निकलता है, फिर आगे आगे कई माइल तक वो फैला हुआ है। ऐसे ही बाबा कहते कि जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो प्रायः लोप हो गया है। मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। तो बाबा धर्म, राज्य और कुल की स्थापना करती है। उसके लिए बाबा ने कहा, आप बच्चों में तीन धारणाएं चाहिए, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए पवित्रता चाहिए और अटल अखंड निर्विघ्न राज्य की स्थापना हो रही है उसके लिए मर्यादा चाहिए, अनुशासन चाहिए, और तीसरा ईश्वरीय परिवार और दैवी कुल, ईश्वरीय कुल और दैवी कुल की स्थापना है तो उसके लिए स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए। परिवार प्यार से चलता है। अभी भी आप देखेंगे, यहां आए हैं अपने लौकिक परिवार से निकल करके आए हैं, तो ये चारों तरफ आपको महसूस होता होगा कि वाह, हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारा कितना बड़ा परिवार है और कितना इसके लिए प्यार आता है। तो आज हम ये चाहते हैं, ये विषय लेंगे कि पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की बाबा स्थापना करती हैं, तो उसमें हमारी आत्मा में संपूर्ण पवित्रता चाहिए। आप भी तीन चार दिन रहेंगे और ये संकल्प करेंगे कि वो छीछी दुनिया जिसको बाबा कहती हैं, आसुरी दुनिया को छोड़ आए हैं और हम एक पवित्र दुनिया में बैठे हैं, तो हमारी पवित्रता अविनाशी बन जाए, 5000 वर्ष के लिए हम पवित्र बन जाए और प्यारे बाप दादा जो हमारे को सर्व खजानों से भरपूर करती हैं, वरदानों से भरपूर करती हैं, उससे हम संपन्न हो जाए। आप आए ज्ञान में, सबसे पहले शिव बाबा इस धरती पर आए, दादा लेखराज जी के तन में प्रवेश किया, उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा और प्रवेश करके बाबा का पहला शब्द क्या था, बी होली बी योगी, पवित्र बनो योगी बनो। जहां पवित्रता है वहां सुख और शांति है। शिव बाबा परम धाम से आकर के इस अपवित्र दुनिया में अपवित्र आत्माओं को पवित्र बना करके उनको सर्व खजानों से, सर्व वरदानों से भरपूर कर रही है। ये वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषता है और शिव बाबा जानी जाननहार है, सर्वज्ञ है, वो जानता है कि ये मेरे बच्चे ऐसे नहीं थे, मेरे बच्चे तो पवित्र थे, ये शांत स्वरूप आत्माएं थी, पवित्र स्वरूप थी, सुख स्वरूप थी, आनंद स्वरूप थी, ज्ञान स्वरूप थी, जन्म मरण के चक्कर में आते आते ये आत्माएं अपवित्र बन गई। अब मुझे जाकर के इन आत्माओं को पवित्र बनाना है और नहीं तो आप ये देखिए कि बाबा परम धाम में बैठी हैं और वो यहां पर और ये संकल्प नहीं चला कि मैं तो पतित दुनिया में जा रहा हूं, कलयुगी दुनिया है, घोर कलयुग है, सब अज्ञानी है, पतित आत्माएं हैं, मेरा पवित्रता का संदेश कौन सुनेगा। बाबा त्रिकालदर्शी है, बाबा जानी जाननहार है, बाबा जानता है कि ये मेरे बच्चे पवित्र थे और माया रावण ने इनको अपवित्र बना दिया, और जाऊंगा तो ये मेरी आज्ञा पालन अवश्य करेंगे। और सबसे वंडरफुल बात कि जब शिवा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया और पवित्र बनो योगी बनो का संदेश दिया, तो सबसे पहले वो संदेश, वो आज्ञा किसने पालन की? किसने पालन की? ब्रह्मा बाबा ने। जैसे ही बाबा ने कहा कि बच्चे पवित्र बनना है, योगी बनना है, और ब्रह्मा बाप को अपने पुराने 84 जन्मों की स्मृति आ गई कि 84 जन्म पहले मैं श्री कृष्ण था, अब मेरी आत्मा पतित बन गई है, अब फिर से मुझे पुरुषार्थ करके, शिव बाबा का राइट हैंड बन करके खुद पवित्र बनना है और औरों को पवित्र बनाना है। जैसे ही ये पवित्र बनो योगी बनो बाबा ने कहा और पहले ब्रह्मा बाप ने फॉलो किया, मम्मा ने फॉलो किया, उसके बाद बच्चों ने किया और चल पड़े पवित्रता की राह पर। कितनी आत्माओं ने उस बात को समझा, जानना और पवित्रता की राह पर चल पड़ी। हालांकि इस पवित्रता पर कई तरह की परीक्षाएं भी आई, हंगामे भी हुए, लेकिन जिस जिस आत्मा को इस बात का निश्चय हो गया, पवित्रता सुख शांति की जननी है, और भगवान आकर के पवित्र बनो योगी बनो का संदेश दे रहे हैं, बुद्धि के कपाट खुल गए, फिर कैसी भी परीक्षाएं आई, उनका निश्चय डोला नहीं, अटल रहा। हम कैसे बनेंगे, क्या होगा, कौन हमारा पवित्रता का संदेश सुनेगा, ऐसे नहीं हुआ। ब्रह्मा बाबा उस राह पर चल पड़े और कितने बच्चों ने फॉलो किया उस बात को, आज आपके सामने इतना बड़ा झाड़। नहीं तो लोग कहते थे ब्रह्मा कुमारियां घर बार फिटाती हैं, भाई बहन बनाती हैं। जब हम ज्ञान में आए तो बहुत बातें सुनते थे, लेकिन एक दिल में बात लग गई, रियलाइजेशन हो गई कि जो बाबा के घर में है और कहीं नहीं है। आज से 55 वर्ष पहले जब मैं अमृतसर में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आई, तो हमारे बड़े दादी जी चंद्रमणि दादी थे, तीसरे दिन उन्होंने कहा कि प्रेम तुम दृष्टि लेकर के योग करती हो, तुम्हें दृष्टि लेनी आती है? मैंने कहा नहीं दीदी, मुझे मालूम नहीं। कहते अच्छा, सामने मैं तुझे दृष्टि देती हूँ, मेरे मस्तक की तरफ देखना, लाल लाइट जल रही है, दीदी सामने बैठी है और दीदी को मैं देख रही हूँ मस्तक की तरफ, और दीदी दिखाई नहीं दी। ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे लाइट ही लाइट है। 15 वर्ष की आयु थी उस समय मेरी, और इस आत्मा को भी अपने पिछले जन्म स्मृति आ गई कि जो आत्मा चाहती है शांति, वो यहां है। दीदी दृष्टि दे रही है, मैं दीदी को देख रही हूं, और दीदी दिखाई नहीं दी, चारों तरफ लाइट ही लाइट का वातावरण। और ऐसा आत्मा ने शांति का अनुभव किया, पवित्रता का अनुभव किया, और एक मन में दृढ़ संकल्प हो गया कि मुझे दूसरा घर नहीं बसाना, यही हमारा घर है। और वो दृष्टि से हमारी सृष्टि बदल गई। आज 55 वर्ष हुए और कितनी खुशी और कितना आनंद की अनुभूति इस आत्मा को हो गई। तो कहने का मतलब है कि भगवान जब आते हैं पवित्र बनो योगी बनो का संदेश लेकर के, तो किन आत्माओं को टचिंग होती है? जो कल पहले वाली आत्माएं आते ही उनको लगेगा कि ये मेरा घर है। मुझे याद है कि अपने रमेश भाई बॉम्बे की, वो जब फॉरेन में सर्विस करने के लिए गए तो वहां पर तो कोई बाबा के बच्चे थे नहीं, तो वहां पर उनको फॉरेनर्स ने कहा कि रमेश भाई आप यहां पर भी होली भी योगी का संदेश लेकर के आए हैं, आपका ये भी होली भी योगी का संदेश कौन सुनेगा? और यहां पर तो आप अगर ये संदेश दे दो ना कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी, तो आप समझो अपने मिशन में कामयाब है। तो रमेश भाई ने कहा नहीं, हम गॉड का मैसेज लेकर के आए हैं, उन्होंने कहा है बी होली बी योगी, हम यही संदेश देंगे, कोई बने या ना बने हम उस संदेश में अमानत में ख्यानत नहीं डालेंगे। और वो दृढ़ निश्चय से गए, बी होली बी योगी का संदेश दिया, और आज आपके सामने है कि आज कितने हमारे फॉरेन कंट्री में सेंटर है, कितनी आत्माओं ने पवित्रता को धारण किया है, कितने बाबा के बच्चे बने हैं, बी होली बी योगी का संदेश दिया है। मुझे याद है कि यूनिवर्सल पीस हॉल में एक बार म्यूजियम देखने के लिए अपने इंडियन लोग आते हैं, और फॉरेनर्स जो थे उनको गाइड का सेवा दी गई थी, तो गाइड कर रहे थे प्रदर्शनी के चित्रों को वहां पर जो बने हुए हैं, उसमें लक्ष्मी नारायण जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, इस मतलब रास मंडल, ये सारा दिखाया है। तो फॉरेनर उनको इंडियन लोगों को समझा रहे थे, तो एक इंडियन के आंखों में आंसू आ गए, कहते हमारी भारतीय संस्कृति और फॉरेनर हमारे को समझा रहे हैं, हमारे को कितना अच्छी तरह से अपनी भारतीय संस्कृति को समझना चाहिए। तो वो बाबा के ज्ञान में चल पड़े, बाबा के बच्चे बने। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान जब आती हैं पवित्र बनो योगी बनो का संदेश लेकर के, और जब हम उसको अच्छी तरह से सुनते हैं, अपने लक्ष्य को मजबूत करती हैं, तो कहते हैं हिमते मर्दा मत देखो। तो आप भी इस पवित्र भूमि में आए हैं, आपको भी अपनी कमी कमजोरी दूर करके जानी है, क्योंकि द्वापर युग से लेकर के हमारी आत्मा विकारों के वशीभूत है, और यहां पर आकर के अपनी कमी कमजोरी को दूर करके और अपने लक्ष्य को मजबूत करेंगे तो अवश्य ही आप प्यारे बाबा के समीप जाएंगे और बाबा के आशीर्वादों से भरपूर होंगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूं कि हम जब ज्ञान में आते हैं तो ज्ञान में आते हैं पहले बहुत अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे लक्ष्य जो है वो डावाडोल हो जाता है, परंतु हमें कभी भी अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, अपने मन को अपने लक्ष्य में टिकाना है। हम जब अपने लक्ष्य से बाहर होते हैं तो माया वार करती है, यही सीता का हाल हुआ। सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की तो उसको रावण चुरा करके ले गया। इसी प्रकार हम ज्ञान में चलते हैं और हम श्रीमत की रेखा को जब पार करते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, तो फिर माया बाहर खड़ी है, बाबा कहते डंडा लेकर के वो आपको पकड़ लेगी, आओ कहाँ जा रहे हो। तो कहते ही कि ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि टीचर ने क्लास में स्टूडेंट को काम दिया कि हर बच्चा बड़ा होकर के क्या बनेगा, अपना अपना लक्ष्य लिख करके लाओ। तो दूसरे दिन जब स्टूडेंट लक्ष्य लिख करके लेकर के गए तो उसमें किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं बिजनेसमैन बनूंगा। तो एक बच्चा था, उसने लिखा कि मैं बड़ा होकर के एक बड़ा अस्तबल बनाऊंगा, उसमें 150-200 घोड़े रखूंगा, एक बहुत बड़ी कोठी बनाऊंगा, 4 कारें लूंगा, एक मेरी बीवी की, 2 मेरे बच्चों की। टीचर बड़ा हैरान हुआ कि इतना छोटा बच्चा ये क्या लिख रहा है। टीचर ने उसको बुलाया, उसने कहा बेटा ये तुमने क्या लिखा और तुम्हारे पापा क्या करती हैं? उन्होंने कहा मेरे पापा तो किसी एक फैक्ट्री में नौकरी करती हैं। तो टीचर ने कहा बेटा देखो मैंने तुम्हारे से तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य पूछा है क्या करोगे, तो ये तुमने लिखा है तुम कैसे पर कर पाओगे कि तुम्हारे जो पिताजी हैं वो तो एक बहुत मामूली नौकरी करती है फैक्ट्री में। चलो टीचर ने फिर क्या किया कि दूसरे दिन स्टूडेंट को फिर होमवर्क दिया कि आपको मैं फिर एक चांस देता हूं, आप बड़े होकर के क्या बनेंगे अपना लक्ष्य लिख करके लाओ। तो दूसरे दिन फिर सब स्टूडेंट ने दूसरी बार लक्ष्य लिखा तो उस बच्चे ने फिर वही लिख दिया। टीचर ने तो समझा था शायद अच्छी तरह से समझ के ये अपने लक्ष्य को बदलेगा, उसने फिर वही लिख दिया कि मैं बड़ा होकर के अस्तबल बनाऊंगा, 150-200 घोड़े रखूंगा, एक बड़ी कोठी बनाऊंगा, 4 कारें लूंगा। तो टीचर को बड़ा गुस्सा आ गया कि मैंने इसको समझाया भी और ये मेरी बात नहीं समझ रहा है। तो टीचर ने उसको स्कूल से निकाल दिया। काफी सालों के बाद क्या हुआ कि जो वो बच्चा था बड़ा हो गया और कार में जा रहा है और जो टीचर है वो सैर कर रहा है सुबह के समय। तो उसने स्टूडेंट ने अपनी टीचर को पहचाना तो वो कार से उतरा, उसने उसको प्रणाम किया और बोला कि मैं आपका वही स्टूडेंट हूं जिसको आपने स्कूल से निकाल दिया था, तो मैं प्रणाम करता हूं, आइए आप हमारे घर में चलिए। तो चलो टीचर को वो लेकर के अपनी कार में बिठा करके लेकर के गया। तो टीचर ने सारा देखा कि कोठी भी है, 4 कारें भी है, उसके बाद उसने अपना अस्तबल दिखाया कि उसमें 2 घोड़े भी बंधे हुए हैं। तो टीचर बहुत हैरान हुआ, उसने बताया कि मैं आपका वही स्टूडेंट हूँ जिसको मैंने आपने ये स्कूल से निकाल दिया था, मैंने ये सब लिखा था। तो टीचर ने पूछा ये सब कैसे हुआ, तो उसने बताया कि आपने जब मुझे स्कूल से निकाल दिया तो मैं राजा के यहाँ पर अस्तबल में नौकरी करने लग पड़ा और उसमें घोड़ दौड़ जो होती है रेस, उसमें मैं रेस में पहले मेरा 5वां नंबर आया, फिर 4था आया, फिर मेरा 3रा आया, फिर 2रा आया, फिर मैं 1st आ गया। जब मैं 1st आया तो फिर मैं अस्तबल का मैनेजर बना। उसके बाद फिर मैंने 2 घोड़े खरीदे, 4 खरीदे, 10 खरीदे, 20 खरीदे और आज ये सब आपके सामने है। तो फिर टीचर ने उसको कहा कि ऐसा था कि जब आपने लिख के दिया था और दूसरे दिन मैंने कहा था फिर से लिख करके लाओ, तो बाकी सारे स्टूडेंट ने दूसरे दिन अपना लक्ष्य बदल दिया था। जो इंजीनियर था उसने कहा मैं बिजनेसमैन बनूंगा, बिजनेसमैन था उसने कहा मैं नौकरी करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। एक तुम स्टूडेंट थे जिसने अपने लक्ष्य को मजबूत रखा और दूसरे दिन भी तुम यही लिख करके लेकर के आए। तो बेटा ये जो तुमने इतनी तरक्की की है ये तुम्हारे एक मजबूत लक्ष्य का परिणाम है। तो इसी प्रकार कहने का मतलब मेरा ये है कि हम भी अपने जीवन में बाबा से सर्व वरदानों से भरपूर होना चाहती हैं। हमारा इतना ऊंचा लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है हमारे श्री विश्वविद्यालय का? मनुष्य से देवता, नर से नारायण। जब हम अपने उस लक्ष्य में मजबूत है और फिर हम उस तरफ चल पड़ते हैं बहुत दिल और जान से, तो अवश्य ही हम अपने उस लक्ष्य पर पहुंचते हैं। तो जो बाबा ने संदेश दिया, पवित्र बनो, योगी बनो, अगर हम उस पवित्रता की राह पर चलते हैं, तो सिर्फ थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि बाबा ने किस बात को कहा है कि आप अगर ये धारणा करेंगे तो पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे। सहज बात, बाबा ने पहला लेसन दिया, तुम कौन? तुम कौन? मैं आत्मा। बाबा की मुरली में आप रोज सुनेंगे कि बच्चे आत्म अभिमानी बनो, बच्चे अपने आप को आत्मा समझो, तुम देह नहीं हो, तुम देही हो, तुम सर्प को मत देखो, मणि को देखो, अर्थात शरीर को मत देखो, तुम आत्मा को देखो, तुम्हारी मणि चमक रही है, भगवान तुम मणियों का, चमकती हुई मणियों का साक्षात्कार करती हैं, और तुम सात गुणों से भरपूर हो, बच्चे आत्म स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। भगवान ने हमें आत्म ज्ञान की अनुभूति कराई है, हम रियलाइज करते हैं कि इन आंखों द्वारा देखने वाली, इन कानों द्वारा सुनने वाली, इस मुख द्वारा बोलने वाली, इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करने वाली मैं कौन हूं? मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, और आत्मा इस शरीर की मालिक है, ये शरीर मेरी कार है, मैं आत्मा इसकी ड्राइवर हूं। और एक बात और बताना चाहती हूं कि मैं ड्राइवर हूं तो दूसरी कार भी आप चलाते हैं तो उसमें पांच बातों का ध्यान देती हैं, तो मैं आत्मा रूपी ड्राइवर को भी पांच बातों का ध्यान देना है। वो कौन सी, वो मैं आपको बताती हूं, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने लक्ष्य से ही भटक गए। देह के नाम को अपना नाम, देह के देश को अपना देश, देह के धाम को अपना धाम, देह के संबंधियों को अपने संबंधी समझा। मैं रूपवान हूं, मैं बुद्धिवान हूं, मैं धनवान हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, तो ये देह अभिमान हमारे को गिरती कला में ले आया। अब हमने चढ़ती कला तो क्या, उड़ती कला में जाने के लिए क्या समझना है कि मैं आत्मा हूं। ये आत्मा का ये शरीर जो है, ये कार है, मैं इसकी ड्राइवर हूं, मैं इसको चलाने वाली हूं। तो वो कार जो होती है उसमें भी ड्राइवर पांच बातों का ध्यान देता है। आप में से कौन कौन कार चलाना जानता है, जरा हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। ठीक है, बहुत अच्छा। जो कार का ड्राइवर है ना, उसको पांच बातों का ध्यान देना बड़ा आवश्यक होता है। सबसे पहले आगे की लाइट, आगे की लाइट नहीं तो कार चला सकेगा नहीं। दूसरा पीछे की लाइट, तीसरा स्टेयरिंग, चौथा ब्रेक, और पांचवा पेट्रोल। अगर पेट्रोल नहीं, ड्राइवर कितना सियाना हो, गाड़ी कितनी महंगी हो, चलेगी? नहीं चलेगी। तो क्या करना होगा, हम आत्मा रूपी ड्राइवर को भी इन पांच बातों का ध्यान देना पड़ेगा। वो पांच बातें कौन सी हैं? सबसे पहले आगे की लाइट। हमारी आगे की लाइट कौन सी है, कौन बताएगा? हाँ जी, हाँ, आगे की लाइट है ज्ञान का उत्तर। आगे की लाइट अपना लक्ष्य, पीछे की लाइट स्टेयरिंग, ब्रेक, पेट्रोल। कौन बता सकता है पांचों बातें? जो ड्राइवर भाई है वो तो बता ही देंगे। ज्ञान भी है, वो भी ज्ञान है कार चलाने का, ये भी ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान का पेट्रोल। मैं हेल्प कराऊं? ठीक है। तो सबसे पहले हमारी आगे की लाइट है हमारे मम्मा बाबा, हमारी वरिष्ठ दीदी और दादियां, हमारे वरिष्ठ भाई बहने, हमारी आगे की लाइट है। कितनी वो आत्माएं शक्तिशाली हैं, और कब से, जब 1937 से जब से यज्ञ की स्थापना हुई, तब से वो बाबा के यज्ञ में पूरा श्रीमत का पालन कर रहे हैं और दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। और एग्जाम्पल आपके सामने है, झाड़ कितना बढ़ रहा है। तो हमारी आगे की लाइट किसको देखना है? जो ज्ञान में आगे चलने वाले हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास एक भाई आता था, उसकी युगल नहीं आती थी ज्ञान में। तो वो क्या हुआ कि 8-10 साल उसके साथ आती रही, परंतु उसको निश्चय नहीं होता था। तो क्या है, 8-10 साल में कुछ भाई बहन ज्ञान से चले गए, कुछ आ गए। ऐसे ही होता है ना कि जिनको निश्चय नहीं हुआ, ज्ञान की बात नहीं समझी, वो चले गए। तो वो जब लड़ती थी तो उसको कहती थी, देखा तेरा ज्ञान में चलने वाला फलाना भी चला गया। वो रोज क्लास करता था, वो भी चला गया, वो भी चली गई। वो माता को कितना नशा था, वो भी चली गई। ऐसे उसने 10-15 नाम उसको बता दिए। वो भाई स्ट्रांग था, लगन वाला था। वो कहता, तेरे को जाने वाले ही नजर आए, तेरे को मरने वाले ही नजर आए, तेरे को माम मम्मा बाबा नहीं नजर आए, तेरे को प्रकाशमणि दादी नहीं नजर आई, तेरे को रमेश भाई नहीं नजर आए, ब्रिजमन भाई नहीं नजर आए। जितने भी उसने वरिष्ठ दादियों की तो लाइन भाई बहनों की लगानी शुरू कर दी। वो कहती, अच्छा अच्छा गलती होगी, अब मुझे माफ कर दे। कहने का भाव ये है कि हम जैसी हमारी स्थिति होती है वैसा हम देखती हैं। तो इसलिए हमने जो ज्ञान में ढीली स्थिति है वो आगे की लाइट नहीं बनानी। अगर धीमी धीमी लाइट होगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। पावरफुल लाइट आगे की, हमारे वरिष्ठ दीदी दादियां मम्मा बाबा। दूसरी बात, हमारी पीछे की लाइट कौन सी है? हमारे पीछे आने वाले जो ज्ञान में बाबा के बच्चे हैं। जैसा कर्म मैं करूं वैसा कर्म वो करे। तो इसलिए हमको अपने कर्मों का ध्यान देना, हमारी पीछे की लाइट पावरफुल हो जाएगी। अगर आगे कार खड़ी होगी तो पीछे सारा ट्रैफिक खड़ा हो जाएगा और हॉर्न बजाने शुरू हो जाएंगे। हमारी भी अगर ठहरती कला हो गई, हमारी गाड़ी खड़ी होगी तो पीछे सारा ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तीसरा, स्टेयरिंग। स्टेयरिंग है श्रीमत, जो बाबा कहता है, जहां बिठाए, जो कराए। अभी आप यहाँ पर आए हैं, 3-4 दिन आप रहेंगे, पूरा बाबा की श्रीमत का पालन करें, पूरा दिनचर्या पर ध्यान दे, पूरा जो भाई बहने क्लास कराते हैं उसको दे, और सब तरफ दर्शन करें, और अपनी आत्मा को आप शक्तिशाली बना करके जाए, तो आपका आने का फायदा है। आप इतना खर्च करके आए हैं, इतना मूल्यवान समय निकाल करके आए, तो बाबा की श्रीमत का पालन करना है। चौथा है ब्रेक। अगर ब्रेक, 1 सेकंड में जजमेंट लेनी होती है, अगर ब्रेक की जजमेंट नहीं ली तो क्या होगा? एक्सीडेंट। इसलिए क्या करना है, कोई भी हमारे पास परिस्थिति आती है, किसी की कैसी भी बात आती है, हमको ड्रामा जो हो रहा है वो अच्छा, जो हो गया वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा। ड्रामा के पटे पर हमें कायम रहना है। पांचवी बात है पेट्रोल। ड्राइवर कितना स्याना हो, गाड़ी कितनी महंगी हो, पेट्रोल नहीं है तो क्या है? पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। तो पेट्रोल है हमारा उमंग और उत्साह। ज्ञान में आप चल रही है, अगर आप उमंग उत्साह में नहीं है, कितना आप ज्ञानी हैं, कितना आपने ज्ञान समझ लिया, कितनी आपने किताबें पढ़ ली, लेकिन अगर उमंग उत्साह का पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी जाम हो जाएगी। इसलिए हम आत्माएं ड्राइवर हैं, शरीर हमारी कार है, और इस आत्मा रूपी ड्राइवर को इन सब बातों का ध्यान दे करके अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है, अपने मन को मजबूत करना है। एक और छोटी सी बात करके मैं पूरा करूंगी। कहते एक बार एक राजा ने मंत्री पद को नियुक्त करना था, मंत्री का चुनाव करना था, तो उसने अपने राजदरबारियों को बुलाया और जब सब बैठ गए तो वो राजा एक बकरा लेकर के आया, बकरा लेकर आया और उनको बोला कि कल शाम तक जो इस बकरे का अच्छी तरह से पेट भर करके आएगा उसको मैं मंत्री बनाऊंगा। सबने कहा ये कौन सी बड़ी बात है। उसमें एक व्यक्ति उठा और बकरा ले गया और सवेरे सारा दिन उसको खेतों में ले गया, उसको अच्छी तरह से घास खिलाई, खूब अच्छी तरह से। और राजा ने कहा इसका जो है फैसला भी मैं करूंगा कि बकरे का पेट भरा है कि नहीं भरा है। तो खूब अच्छी तरह से मैं वो ले गया और उसको अच्छी तरह से सारा दिन खेतों में चारा खिलाया। शाम हुई, राजदरबार लगा, वो व्यक्ति बकरा ले आया, लाओ महाराज मैं इसका पेट भर के लाया हूँ। तो राजा अंदर से हरी हरी घास लेकर के आए, बकरे के आगे रखी, बकरा खाना शुरू कर दिया। तो राजा कहता है ये बकरे का पेट नहीं भरा है, नेचुरल है कि पेट भरा होता तो नहीं खाता। फिर दूसरा व्यक्ति उठा, कहता महाराज कल से मैं इसका पेट भर करके लाऊंगा। तो वो भी ले गया, सवेरे सारा दिन उसको चारा के खेत में चारा खिलाया और ऐसे ही शाम को जब आया बोला महाराज मैं इसका पेट भर के लाया हूँ। ऐसे ही राजा ने खाली और उसने खाली, राजा ने कहा नहीं इसका पेट नहीं भरा। फिर एक और व्यक्ति था, वो बड़ा समझदार था, कहता मैं कल इसका पेट भर करके लाऊंगा। तो बोला ठीक है। तो क्या हुआ कि वो उसको सवेरे ले गया चारा के खेत में, साथ में एक ले गया डंडा, लाठी ले गया, और जब वो चारा खाए उसके सिर पे लाठी मारे, जब वो चारा खाए उसके सिर पे लाठी मारे। उसने सारा दिन उसको चारा नहीं खाने दिया, खाने ही नहीं दिया। और जब शाम को लेके आया राजदरबार में, कहता महाराज इसका मैं पूरी तरह से पेट भरा हूं, और साथ में बैठ गया लाठी लेकर के। अब वो जो घास खा रहे, राजा ने घास आगे रखी, तब उसको घास दिखाई दे कि लाठी दिखाई दे, उसने खाई ही नहीं, चारा खाया ही नहीं। राजा कहता हाँ इसका पेट भरा हुआ, खाया नहीं। तो एक तरफ तो वो लाठी को देखता था, दूसरी तरफ चारा को देखता था। तो कहने का भाव ये है, हमारा भी मन रूपी बकरा, संयम रूपी लाठी, और स्वयं भगवान उसका फैसला करने वाला। हमें अपने रूपी बकरे को समझाना है, संयम रूपी लाठी, जो बाबा कहता है, जो श्रीमत आती है, जो मुरली में आता है, जो हमारे बड़े दीदियां दादियां कहती है, उसको अच्छी तरह से अपने अंदर धारण करना, ध्यान से सुनना। जैसे चात्र जब वर्षा होती है उसकी इंतजार करता है और उसको मुंह खोलता है और उससे उसकी प्यास बुझती, इसी प्रकार हम आत्माओं ने भी जन्म जन्मांतर उस भगवान को ढूंढा है, तीर्थ यात्राएं की है, दान पुण्य किए हैं और तपस्याएं की हैं, और अभी हमको जब वो भगवान मिल रहे हैं, मिले हैं, तो हमें चात्रक की तरह बाबा के एक एक महावाक्य को के पाठ खोल करके अच्छी तरह से समझ करके बाबा के ज्ञान को धारण करके और इस तपस्वी भूमि पे आए, अपनी आत्मा को सब वरदानों से भरपूर करके जाना है। ऐसी हमारी बड़ी दीदियों दादियों की शुभकामना शुभ भावना है। ओम शांति, ओम शांति। Thank you.
खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपका, खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपका। प्यारे प्रभु कोई कहा हमारा आपका, खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपका।
Ah।